પંચાસ્તી કાય સંગ્રહ લેક્ચર નંબર 111 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્જાયાણં નમો લોયે સૌવસાવૂનં ઇન્દસદવંદ્યાણં તિહુઅણહિદમધુરવિશદવક્કાણં અંતાતીતગુણાણં નમો જીણાણં જિદભવાણં યહાં પર યે હમ દૂસરા ભાગ દેખ રહે હૈ પંચાસ્તિકાય સંગ્રહ કા વહાં પર બતા રહે હૈ નવ પદાર્થ પૂર્વક મોક્ષ માર્ગ પ્રપંચ વર્ણન કહાં દેખ રહે હૈ આપ ઇધર ઇધર અરે પણ વો
વહાં વહી સે શુરુ હો જાતા હૈ
અચ્છા
યે નહીં હૈ યે હમારી પુરાની
હમ પુરાને લોગ હૈ પ્રથમ યહાં પર ક્યા બતા રહે હૈ કે નવ પદાર્થ કહો યા સાત તત્વ કહો બાત એક હી હોતી હૈ નવ પદાર્થ મેં પુણ્ય ઓર પાપ કો એડ કર દિયા વો એકચ્યુઅલી હૈ આસરો બંધ કે હી ભેદ યાની તત્વો કી અપેક્ષા સે હમ જબ દેખતે હૈ તો સાત તત્વ કહે જાતે હૈ ઉસમે પુણ્ય પાપ અલગ નહીં હૈ ઓર નવ પદાર્થ કી બાત હોતી હૈ તબ ઉસમે પુણ્ય ઓર પાપ કો અલગ કરકે નવ પદાર્થ ગિને જાતે હૈ લેકિન બાત તો યે હૈ કે પુણ્ય યા પાપ યે દોનો આશ્રય ઓર બંધ કે હી ભેદ હૈ બસ ઇતના હી ધ્યાન રખના પ્રથમ પ્રપંચ વર્ણન યાને મોક્ષ માર્ગ કા ઉસકા જો કોઈ હાલત હોગી કૈસે પ્રાપ્ત કરના વગેરે વગેરે પ્રોસેસ જો હૈ
પ્રપંચ યાને વિસ્તાર સે વર્ણન વો ભી હોગા ના પ્રપંચ વર્ણન
પ્રથમ શ્રી અમૃત ચંદ્રાચાર્ય દેવ પહેલા શ્રુત સ્કંદને વિશે શું કહેવામાં આવ્યું અને બીજા શ્રુત સ્કંદને વિશે શું કહેવામાં આવશે તે શ્લોક દ્વારા અતિ સંક્ષેપમાં દર્શાવે છે અને હમને ભાગ પહેલા જો દેખા થા ઉસમેં ક્યા બતાયા ઓર ભાગ દૂસરે મેં અભી જો આયે ઉસમેં ક્યા બતાએંગે ઉસકા વર્ણન યહાં સમય વ્યાખ્યા મેં અને અમૃત ચંદ્રાચાર્ય ને બતાયા હૈ ઉસકી વાત યહાં પર બતા રહે હૈ
સાત નંબર ક્યું દિયા
પહેલે 6 એકદમ શરૂઆત મેં આયે
કે અમૃત ચંદ્રાચાર્ય ને જૈસે સમય સાર ને બીચ બીચ મેં કલશ લિખે થે વૈસે નહીં હૈ યે તાત્પર્ય વૃત્તિ કે શ્લોક હમને દેખે થે પદ્મ પ્રભો મલધારી દેવ સોરી ઉસમેં નહીં इनके ही उसको समय व्याख्या नाम दिया था परंतु वो गद्यात्मक था बीच में कोई कलश नहीं थे शुरुआत में 6 लिखे थे ये सातवां पहली पुस्तक में जब शुरुआत हुई थी ग्रंथ को वहाँ 6 श्लोक लिखे थे अमृत चंद्राचार्य इसलिए इसको 7 नंबर दिया
अभी पढ़ेंगे सातवां नंबर દ્રવ્યસ્વરૂપ પ્રતિપાદેન શુદ્ધમ બુધાનમિહં તત્વમુક્તમ પદાર્થભંગેન કૃતાવતારમ પ્રકીર્તતે સંપ્રતિ વર્તમતસ્ય વર્તમર વર્તમત ન કેસે ઉચ્ચાર કરને વર્તમ શ્લોકાર્થ અહીં આ શાસ્ત્રમાં પ્રથમ શ્રુત સ્કંધને વિશે દ્રવ્ય સ્વરૂપના પ્રતિપાદન વડે બુદ્ધ પુરુષોને અને સમજુ જીવોને શુદ્ધ તત્વ શુદ્ધાત્મ તત્વ ઉપદેશવામાં આવ્યું. હવે પદાર્થ ભેદ વડે ઉપોદઘાત કરીને નવ પદાર્થ રૂપ ભેદ વડે પ્રારંભ કરીને તેનો માર્ગ શુદ્ધાત્મ તત્વનો માર્ગ અર્થાત તેના મોક્ષનો માર્ગ વર્ણવામાં આવે છે. હવે આ બીજા સૂક્ત સ્કંદને વિશે શ્રીમદ ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવ વિરચિત કાથા સૂત્ર શરૂ કરવામાં આવે છે. ક્યાં ક્યાં વર્તમાન સંપ્રતિ
વર્તમાન આવે છે. સંપ્રતિ કા અર્થ હોય અહી
બરાબર માલુમ નહી હૈ ઇસમે લિખા હૈ ક્યા
વર્તમાન
સાંપ્રત હો ગયા વર્તમાન કા અર્થ પૂછ રહે ઉસકે આગે કા શબ્દ જો હૈ ના
વર્તમાન શબ્દ પૂછા
એક મિનિટ ઇસમે ઉસકા અર્થ હૈ કે દેખતે હૈ એને શબ્દાર્થ હોગા તો હી પતા ચલેગા.
105 કે નીચે 105 કે ઉપર
ઉપર હા હા
સંપ્રતિ તો સાંપ્રત કાલ હો ગયા વર્તમાન તસ્ય કથન હોગા વિવેચન વર્તમાન
ઉસકે માર્ગ કા વર્ણન કિયા જાતા હૈ માર્ગ નો વો ડિક્શનરી મે દેખ લેના
સંસ્કૃત કા ડિક્શનરી હોગા ના આપકે પાસ
હૈ તો સહી લેકિન યે હોગા
નહીં હો બાય ચાન્સ હોગે તો દેખ લો
વર્તમાન
તસ્ય હા 105 પડેંગે હા અભિવંદી ઉણચિરસા અપૂર્ણ ભવ કારણમ મહાવીરમ તે સિંપયત્ત ભંગમ મગ્ગમ મોખ સવોચ્છામિ અભિવંદ્ય શિરસા અપૂર્ણર્ભવ કારણમ મહાવીરમ તેષાં પદાર્થ ભંગમ માર્ગમ મોક્ષસ્ય વક્ષામિ શિરસાનમી અપુનર્મજમના હેતુ શ્રી મહાવીરને ભાખો પદાર્થ વિકલ્પતે મોક્ષ કે રામાર્ગને અપુનર્ભવના કારણ એને પરત દુબારા જન્મ લેને કી બાત કર રહે હૈ પુનર્ભવ દૂસરા ભવ લેને કા કારણ એને દૂસરા ભાવ નહીં લેને કા કારણ પુનર્ભવ નહીં અપુનર્ભવ હૈ મહાવીરમ અરે સંસ્કૃત નહીં પઢને કા શ્રી મહાવીરને શિરસા વંદન કરીએ કરીને તેમનો પદાર્થ ભેદ કાળ સહિત 85 કાયનો 9 પદાર્થ રૂપ ભેદ તથા મોક્ષનો માર્ગ કહીશ. અપુનર્ભવ કારણમ અપુનર્ભવના કારણ મહાવીરમ શ્રી મહાવીરને શિરસા અભિવંદ્યમ અભિવંદ્ય શિરસા વંદન કરીને તેષાં પદાર્થ ભંગમ તેમનો પદાર્થ ભેદ કાળ સહિત 85 કાયનો 9 પદાર્થ રૂપ ભેદ તથા મોક્ષસ્ય માર્ગમ મોક્ષનો માર્ગ વક્ષામિ કહીશ. તાત્પર્ય વૃત્તિ
ઇતિ ઉર્ધ્વ અભિવંદી ઉણ શિરસા इति इमाम गाथाम आदिम कृत्वा पाठक्रमेण। अभी आने वाला विषय यहाँ बता रहे हैं कि ये ऊपर जो गाथा है ना अभिवंदी उन्हें शीर्षा, इस गाथा को आदि करके पाठक्रम से पंचाशत गाथा पर्यंतम टीकाभिप्रायेण अष्टाधिक चत्वारिंशत गाथा पर्यंतम वा, यानी टीका के अभिप्राय अष्टाधिक चत्वारिंशत, यानी वो तो पचास गाथा पर्यंत इतने गाथाओं तक वा जीवादि नव पदार्थ प्रतिपादको द्वितीय महाधिकार प्रारभ्यते। यहाँ क्या कहते हैं, अब यहाँ से पहले तो एक हो गया अपना पहला महाधिकार हो गया, अब यहाँ कौन सा है, जीवादि नव पदार्थ प्रतिपादन करने वाला, इसको प्रतिपादक कहा। यहाँ जीवादि नव पदार्थों का प्रतिपादन होगा, वहाँ जीवादि पांच अस्थिकाएं कहो या जीवादि छह द्रव्य कहो उसकी कथा हो, उसकी बात होगी। अब यहाँ जो नव पदार्थ है उसकी चर्चा चलेगी। ये द्वितीय महाधिकार यहाँ शुरू होता है, तत्र तु दशांतर अधिकारा भवन्ति, यानी वहाँ दस अंतर अधिकार, अंतर अधिकार नहीं वो उसके अलग अलग चैप्टर्स हो गए दस अलग अलग। तेषु दशाधिकारेषु मध्ये, उन दशाधिकारों में प्रथमतः तावन नमस्कार गाथाम आदिम कृत्वा, वहाँ नमस्कार गाथा से लेकर पाठक्रमेण पाठक्रम से गाथा चतुष्टय पर्यंत चार गाथाओं तक व्यवहार मोक्ष मार्ग मुख्यत्वेन व्याख्यानम करोति। व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यत्व से यहाँ व्याख्यान करेंगे, करते हैं। इति प्रथम अंतराधिकारे समुदाय पातनिका, इस तरह पहले अंतर अधिकार में समुदाय पातनिका है, यानी वो तो अभी आने वाला विषय क्या है उसको यहाँ उपोद्घात रूप से बता रहे हैं। तथा ही वह इस प्रकार है, अब जो गाथा कही है उसके बाद बताएंगे। अंतिम तीर्थंकर परम देवम नत्वा, ये अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे, उनके नाम मालूम है क्या क्या है, कितने हैं, वीर महावीर फिर और आपको मालूम वर्धमान, पांच नाम है उसके, एक वीर अतिवीर महावीर, वीर अतिवीर महावीर सन्मति और वर्धमान, ये उन्हीं के नाम है, पांच नाम थे। वीर तो आता है ना गाथाओं में, हमने अपने सुने, देखो अंतिम तीर्थंकर, ये अंतिम हमारे जिसको हम कहेंगे ना हमारे अवसर पीने के, वर्तमान है नहीं, अभी हमारा पांचवा काल चल रहा है, वहाँ चौथे काल में चौथे आर्य में हुए थे, तो एक के बाद एक ऐसे 24 हुए थे, तो ये अंतिम। और जब हम कहेंगे विद्यमान 20, यानी अभी वर्तमान में 20 जगह 20 अलग अलग है, एट अ टाइम 20 है, और हमारे 24 हुए वो एक के बाद एक हुए, इसे अंतिम कहते हैं। तो अंतिम तीर्थंकर परम देव देवम नत्वा, उनको नमस्कार करके पंचाशिकाय षड्द्रव्य संबंधिनम नव पदार्थ भेदम मोक्ष मार्गम च वक्षामि इति प्रतिज्ञा पुरस्सरम नमस्कारम करोति। क्या कहते हैं, अंतिम तीर्थंकर परम देवों को नमस्कार करके पंचाशिकाय और षड्द्रव्य संबंधी जो नव पदार्थ है और मोक्ष मार्ग है उनका मैं कथन करूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा, ये तो प्रतिज्ञा करके शास्त्र लिखने की पद्धति है, इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं। अभिवंदिऊन शिरसा अपुनभवकारणम महावीरम, अभिवंद्य ने प्रणम्य यानी नमस्कार करके, केन किसके द्वारा, शिरसा यानी मस्तक नवाकर जिसको सिर के द्वारा, कम किनको नमस्कार करते हैं, अपुनर्भव कारणम महावीरम, अपुनर्भव यानी मोक्ष, जहाँ फिर दोबारा भव न लेना पड़े तो उसके कारण कौन है, तो महावीर भगवान, तो महावीर भगवान मोक्ष देंगे कि नहीं देंगे यहाँ लिखा है ना उन्होंने। तथा किम करो मैं, तो उसके बाद वो नमस्कार करके क्या करूँगा या क्या करता हूँ, तो कहते वोक्षामि यानी वक्षामि, मैं कहता हूँ। कम तेसिम वयत्थ भंगम तेषाम, तेषाम मैंने पंचास्तिकाय षड द्रव्याणाम नव पदार्थ भेदम, ये जो पांच अस्तिकाय और छह द्रव्य जो बताए है उन्हीं के ये नव पदार्थ भेद यहाँ कहेंगे।
नौ पदार्थ
को नौ तत्व नहीं कहते, कहीं कहीं कहेंगे, ऐसा भी आता है ना कहाँ शास्त्र में, नौ तत्वों में छिपी हुई आत्म जो, तो नौ पदार्थ कहो तत्व कहो, अलग अलग जगह अलग।
हाँ
पांच अस्थिकाय और छह द्रव्यों के ही नौ पदार्थ भेद बताए, ऊपर भी आता है ना उस संबंधी, उस संबंधी ऐसा आ जाता। न केवलम नव पदार्थ भेदम, मात्र नव पदार्थ भेद ही नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा, मग्गम मोक्षस्य मार्गम मोक्षस्य इति, यानी मोक्ष का मार्ग भी बताऊंगा, इसलिए ऊपर च शब्द डाला था उन्होंने। तद यथा वह इस प्रकार है, मोक्ष सुख सुधारस पान पिपासितानाम, क्या कहते हैं मोक्ष रूपी सुख, मोक्ष सुख रूपी सुधारस, सुधारस है अमृत, मोक्ष सुख रूपी अमृत के पान करने के लिए जो पिपासित है, पिपासु है वो इच्छुक है, तृषा से वो तो व्याकुल है वो पीने के लिए, ऐसे भव्यों के लिए पारंपरियेण अनंत ज्ञानादि गुण फलस्य मोक्ष कारणम, परंपरा से अनंता भव्यानाम परंपरा से अनंत ज्ञानादि गुण फल का कारण मोक्ष कारणम महावीर अभिधानम अंतिम जिनेश्वरम, यानी वो मोक्ष का कारण किसको बताया, महावीर भगवान को, महावीर नामक अभिधानम यानी महावीर नामक अंतिम जिनेश्वर को, रत्नत्रयात्मकस्य प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थस्य प्रतिपादकत्वात्, यानी उन्होंने क्या किया है, रत्नत्रयात्मक जो प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ है, धर्म तीर्थ का अर्थ होता है
उपदेश,
तीर्थ का अर्थ होता है उपदेश, तीर्थ का उपदेश तीर्थ कर और उससे तीर्थंकर ऐसा शब्द है, उपदेश करने वाले तो महाधर्म तीर्थ, कौन से चार तीर्थ, तीर्थ का ही अर्थ वही उपदेश ही है ना,
रिपीट कर,
तीर्थ की स्थापना करते वो तीर्थंकर, पर तीर्थ कहना किसको, तीर्थ एक होता है ना तीर्थ तत्व का वो लोप हो जाएगा, अब वो उपदेश के द्वारा तारते हैं ना और क्या करते हैं। वो एक आता है तत्व का लोप हो जाएगा तीर्थ का लोप हो जाएगा ऐसा एक शब्द आता है, तीर्थ का अर्थ उपदेश ही होता है। तभी तो तीर्थंकर शब्द तैयार हुआ है, तभी तो प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ से, महाधर्म तीर्थ का प्रतिपादक होने से प्रथमता एवं प्रमाणम, वो प्रमाण है गाथा पूर्वार्धेना, ये पहली गाथा की पहली लाइन, मंगलार्थम इष्ट देवता नमस्कारम करोति, यानी ग्रंथ के आदि में मंगल किया जाता है और अपने इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है। आप कहेंगे ग्रंथ तो वही शुरू हुआ था, पर यहाँ तो नया अधिकार शुरू हुआ है इसलिए यहाँ फिर दोबारा मंगलाचरण करते हैं, कौन कर रहा है तो ग्रंथकार, यानी ग्रंथकार उनको नमस्कार करके आदि में नमस्कार करते हैं। तदनंतरम उत्तरार्ध है ना, यानी सेकंड लाइन में उत्तरार्ध गाथा का उत्तरार्ध है ना दूसरी लाइन, उत्तरार्ध है ना च शुद्धात्म रुचि प्रतीति निश्चल अनुभूति रूप रूपस्य अभेद रत्न त्रयात्मकस्य निश्चय मोक्ष मार्गस्य परंपराया कारणभूतम व्यवहार मोक्ष मार्गम, क्या कहते हैं उसके पश्चात, पहले में पहले लाइन में क्या किया, भगवान महावीर को नमस्कार किया क्योंकि वो मोक्ष के कारणभूत है, मोक्ष का कारण क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने महाधर्म तीर्थ का प्रतिपादन किया। तीर्थ का प्रतिपादन किया है उसका अर्थ ही क्या है? उपदेश का प्रतिपादन किया, मोक्ष मार्ग को बताया। और वहां नमस्कार करके अभी उत्तर है सेकंड लाइन में, गाथा का उत्तरार्ध का अर्थ होता है वो नीचे की लाइन। तो उसमें देखो किसका उपदेश दिया है, तो मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग का। एक्चुअली वह मोक्ष मार्ग का कहेंगे क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग का जो परंपरा कारणभूत ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब परंपरा कारणभूत किसको कहेंगे? ये करते करते निश्चय होगा ऐसा उसका अर्थ नहीं है। परंपरा का अर्थ है इसका अभाव होकर वो हो जाएगा, उसको परंपरा कहेंगे। जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उसके अभी जो राग भाव है, तो आगे करते करते वो जिसको स्थिरता अंतरंग में बढ़ती चली जाएगी वितरागता, और वो जो रागादि भाव वो घटते चले जाएंगे, उसका अभाव होकर निश्चय मोक्ष मार्ग परिपूर्ण हो जाएगा, उसको कहेंगे परंपरा। ये अज्ञानी के जो शुभ भाव को उसको परंपरा ऐसा शब्द लगता नहीं है। मात्र ज्ञानी को जो साधक जीव है उसने जिसने निश्चय प्रकट किया है ऐसों का जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसको परंपरा
मोक्ष का
उसका
कारण।
मोक्ष का कहेंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग का या मोक्ष का कारण कहेंगे परंपरा। परंपरा का अर्थ आगे चलकर वो मिटकर था। जैसे आपको खरीदी को जाना है, गहने कुछ कपड़े खरीदना है, तो कैसे मिलते हैं, क्या देते हैं उसको? पैसे से आता है ना, पैसे से आता है कि पैसा खर्चा करके देकर आता है, क्या होता है? तो पैसा भी रखो और कपड़े भी मिल जाए, नहीं पैसा देके भी मिलता है। ऐसे ही यहाँ जो शुभ भाव आदि है उसको व्यय करके वो छोड़कर वो चला जाएगा, तब शुद्ध में परिपूर्ण शुद्ध अभाव प्रकट होगा, उसको कहेंगे परंपरा। तो यहाँ मोक्ष मार्ग का यहाँ वर्णन करने वाले हैं और उसका निश्चय मोक्ष मार्ग का परंपरा कारण बताया है। और ये निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है अभी उसके पीछे चलो कि अभेद रत्न त्रयात्मक है, मिला निश्चय मोक्ष मार्ग से ना, उसके पहले का शब्द क्या है? अभेद रत्न त्रयात्मक ऐसा जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका वो व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा कारण है। अभी वो उसका और पहले चला, वो कैसा है, किस रूप है? तो शुद्धात्म रुचि प्रतीति निश्चल अनुभूति रूप। ये अभेद रत्न कैसा है? तो शुद्धात्मा की रुचि प्रतीति और निश्चल अनुभूति रूप ऐसा जो अभेद रत्न त्रयात्मक ऐसा जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका परंपरा कारणभूत ऐसा जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अभी हमने आधा ही वाक्य के पढ़ा है। तो मोक्ष मार्गम तस्सैव यानी उसी का व्यवहार मोक्ष मार्ग से यानी उसी मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयवभूतयो हो दर्शन ज्ञान यो हो विषय भूतान नव पदार्थांश्च प्रतिपादयामि इति प्रतिज्ञां च करोति। यानी जो व्यवहार मोक्ष जो है उसके जो अवयव भूत क्या क्या है, दर्शन ज्ञान के विषय भूत, यानी दर्शन और ज्ञान के विषय भूत ये जो नव पदार्थ है उसी का मैं प्रतिपादन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। अत्र यद्यपि अग्रे चूलिकायां मोक्ष मार्गस्य विशेष व्याख्यानम अस्ति तथापि नवपदार्थानां संक्षेप सूचनार्थम अत्रापि भणितम्। यानी यद्यपि आगे अग्रे ने आगे चलकर चूलिका लिखेंगे और उसमें मोक्ष मार्ग का विशेष व्याख्यान करने वाले हैं, फिर भी यहाँ नव पदार्थों के संक्षेप रूप से सूचना के लिए यहाँ पर भी उसका कुछ व्याख्यान करेंगे संक्षेप से। कथम संक्षेप सूचनमिति चेत, ये संक्षेप सूचन किस तरह से है? नव पदार्थ व्याख्यानम तावत अत्र प्रस्तुतम, यानी जो नव पदार्थों का व्याख्यान है वो यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तेच कथम भूता, ये नव पदार्थ कैसे है? तो कहते व्यवहार मोक्ष मार्गे विषय भूता इति अभिप्राय, यानी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में उसके विषयभूत है ऐसा इसका अभिप्राय है।
अभी हम समय व्याख्या को देखते हैं। देखो पेज नंबर 2 पे वो अनुवाद है, आप्तने स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा करे छे। आप्त यानी क्या? दक्षा बहन आप जानती हैं, आप्त यानी अपने रिलेटिव, अपने स्वयं नहीं। आप्त जो तीर्थंकर को आप्त कहते हैं, जो तीर्थंकर को आप्त कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान को आप्त कहते हैं, क्यों कि वो हमें मोक्ष मतलब संसार का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं, और आप तो ही अपने आप्तों का हित करते हैं। हम तो लौकिक में हमारे जो कोई रिलेटिव सगा संबंधी है उनको आप तो कहते हैं, वो अर्थ यहाँ पर नहीं है।
आप तो ने उसके जो अरिहंत भगवान को ही यहाँ लिया क्योंकि उपदेश देने वाले वे ही, ऐसे जो अन्य अन्य दर्शन है उनके अपने अपने आप्त हो गए जो कुछ, पर यहाँ सिद्धों को आप्त संज्ञा नहीं कहते, अरिहंतों को लेते जिनके द्वारा हमें उपदेश मिलता है वो आप्त, यानी आप्त आगम और तपोवृतेने मुनि, ऐसा उसमें देवगुरु या आप्त आगम और आगम यानी शास्त्र आ गया, देव गुरु और शास्त्र है ना, आप्त आगम और मुनि के लिए तपोवृत कहते, तपोवृत यानी मुनि।
देखो बात ऐसे होती है, लौकिक की बात हम देखते हैं तो माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए सारा जो कुछ करते हैं वो, तो उनको हम आप तक कहते हैं। कई मामा है, कोई फूई है, उनको भी आप तक कहेंगे, किस लिए कि मान लो कि उन्होंने उस बच्चों के लिए कुछ हितकारी बात की है तो उसको उपचार से आप तक कहेंगे। लेकिन यहाँ हम आगम की बात देख रहे हैं, यहाँ आप्त का अर्थ अरिहंत परमात्मा जो हित का उपदेश देते हैं, तीर्थंकर जो हित का उपदेश देते हैं उन्हीं को आप्त कहने में आता है। तो क्या कहते हैं, हा आप्त ने स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा छे, यानी यहाँ पर जो नया शास्त्र का शुरुआत हो रही है तो वहाँ पर भी अपने भगवान को नमस्कार करके प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ जो लिखूंगा वो आपको हितकारी हो जाए, यानी तुमको हमको भगवान को नहीं, ऐसे आपतन स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा छे। प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थना मूल कर्ता तरीके जे वो अपुनर्भवना कारण छे। अपुनर्भवना कारण ने बार बार भव लेने की जिसको आवश्यकता नहीं रहती है, दोबारा भव प्राप्त नहीं होगा यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कारण इसके लिए कारण कौन है कि तरीके जे वो अपुनर्भवना कारण छे एवा भगवान परम भट्टारक महादेवादि देव श्री वर्धमान स्वामीनी सिद्धत्वना निमित्तभूत भाव स्तुति करी ने काल सहित पंचास्ति कायनो पदार्थ भेद, पदार्थ अने द्रव्य अर्थात 6 द्रव्यों नो अने 9 पदार्थ रूप भेद तथा मोक्षनो मार्ग केवानी आ गाथा सूत्र मा प्रतिज्ञा करवामा आवी छे। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है।
यहाँ शब्द एक भावस्तुति बताई है, ये भावस्तुति क्या होती है
और द्रव्य स्तुति क्या होती है?
हाँ, जैसे भगवान का जो शुद्धात्म स्वरूप है मेरा भी वैसा ही है, तो भगवान का जो स्वरूप जानता है वो अपने आत्मा में लीन हो जाता है और अपने आत्मा में लीन होकर उसने अपना अनुभव किया तो वहाँ उसने भाव नमस्कार किया, उसको सच्चा नमस्कार करेंगे।
इसको
और बाहर जो शरीर की जो क्रिया है बोलना है वो सब द्रव्य नमस्कार करता है, और वो भी द्रव्य नमस्कार किसको कहेंगे, जिसके भाव नमस्कार प्रकट हुआ है उसी के द्रव्य नमस्कार सच्चा, नहीं तो व्यवहार भी नहीं है सब।
नहीं अभी हमारे तो भाव नमस्कार नहीं है लेकिन जाके पैर तो पड़ते तो द्रव्य नमस्कार तो हमारा साचा के नहीं, नहीं। जिसके भाव नमस्कार है, यहाँ भाव स्तुति कहा है, जिसके भाव नमस्कार है उसके ही द्रव्य नमस्कार होते हैं, ख्याल में? तो आपने को जल्दी से जल्दी द्रव्य नमस्कार भी चालू होवे ऐसा विचार करना चाहिए कि नहीं?
यानी जो करते उसकी छोड़ने की बात नहीं है, भगवान की पूजा भक्ति वगैरह होगी, क्योंकि अभी हमें जो आगम मिला है उन्हीं का बताया हुआ है, इसलिए उनके प्रति विनय तो जरूर होगा।
देखो यहाँ पर जो उपदेश दिया जा रहा है ये पंचास्तिका के माध्यम से, यहाँ अपनी मान्यता में फेरफार करना है। हम कोई विशेष पुण्य परिणाम करते हैं वो छोड़ने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन वो करते हुए मुझे धर्म होगा ऐसी मान्यता को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सही नहीं है। यानी कल से हम भगवान को नमस्कार करते थे, कल से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भाव नमस्कार नहीं करने की ताकत, यानी अपने भाव स्तुति यानी अपने स्वभाव का अवलंबन हमने लिया नहीं है, तो हम बाहर की स्तुति कहो या नमस्कार कहो छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, नरक में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? दूसरा रास्ता क्या है? देखो गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते थे, आ बधा सेठियाओ बैठा छे ने ए बधा पशु में जवाना, ढोर, अच्छा ढोर में जवाना, यानी तीरंज में, क्यों? क्या तो दारू मांस ने
मदिरा,
क्या है, क्या
मदिरा,
मदिरा, हाँ दारू हो गया ना,
दारू बताए, हाँ, 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 मद, मद
ये तो खाते नहीं है लेकिन व्यवसाय करने में अड़ोड़ी करते, यानी
मायाचारी,
हाँ मायाचारी करते तो निश्चित नरक नहीं जाने वाले हैं वो, तो ऐसा कर। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि मायाचारी आडोडाई करे छे, आडोडाई अभी शब्द याद आया, आडोडाई म्हणजे आडू शरीर मळे, आडोडाई करवाती ऐसा बताते थे के क्या बनिया छे जैन छे तीर्थंकर ने नमस्कार करे पण आडोडाई करे, दारू मांस ने मद खाता नथी एटले पाप करता नथी। इसका अर्थ क्या है समझ लेना कि जो दारू पीता है उसमें रस करता है, जो मांस खाता है या मदिरा दारू हो गया वगैरह वगैरह, मद भी आज सुबह में आए थे मालूम है कि नहीं, दरवाजा बंद करो खिड़की बंद करो, अभी यहाँ मधुमाखी आएगी तुम्हारे घर में, कुछ आई नहीं कुछ नहीं, हमने बंद ही नहीं किया, हमको मालूम है, ये बाद में आके बोलते हैं आपको चाहिए क्या करके। इस तरह से यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कि गाथा सूत्र में प्रतिज्ञा करवामा आवी छे, जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है ना उसको दोबारा भव लेना नहीं पड़ता है। देखो बहुत अच्छा वाक्य हमेशा याद रखने जैसा है, गुरुदेव श्री बोलते ये मनुष्य पर्याय जो तुझे मिली है ये तो भवनो अभाव करवा माटे मळेलू छे, यानी भव यानी बारंबार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करना ये तुझे शोभादायक नहीं है, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि अपने स्वभाव को स्वरूप को जानकर उसको मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर उसी में एकाग्र हो जाना, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति करना अपने आत्मा का अनुभव करना, तो उसको अधिक भव नहीं रहते। तो यहाँ अपुनर्भव कहा ना कि जे वो अपुनर्भव ना कारण से कौन के वो प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थना मूल करता, यहाँ तो भगवान महावीर के बात चल रही है। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त थयो, तेमा छ द्रव्यो स्वतंत्र बतायवा, स्वतंत्र बतायवा यानी स्वतंत्र का अर्थ क्या है लेना मनीषा बेन, स्वतंत्रता का अर्थ क्या लेना? हाँ और नहीं नहीं नहीं, अत्यंत अभाव। देखो देखो, पहले में पहले द्रव्य का स्वभाव क्या है सुनना। तो कहते सत द्रव्य लक्षण है, तो सत कैसा है? तो कहते कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, यानी प्रत्येक द्रव्य अपने नए पर्याय का उत्पाद और पुरानी पर्याय का व्यय स्वयं करता है, तो वो करने में वो स्वतंत्र है। वो करने के लिए मेरे में उत्पाद करने के लिए मेरे में ज्ञान होने के लिए कोई दूसरे पदार्थ की या दूसरे द्रव्य की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको सिखा सकता हूँ क्या? नहीं, ये हमको पूछो। अभी इसके लिए क्या, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करते, लेकिन मूल स्वभाव कैसा है कि मेरी पर्याय मेरे में मेरे से मेरे लिए उत्पन्न हो रही है, ये स्वभाव प्रत्येक है। तो ये स्वतंत्रता जब तक ख्याल में नहीं आती है तब तो ऐसा लगता है कि अरे रे, मैंने बच्चों के लिए इतना किया इतना किया, दिन रात मेहनत की, रात को उजागरा किया, क्या क्या किया, और अभी शादी हो गई तो सब पलट गया। तो क्या हम समझते कि मैंने उसका किया और वो मेरा कुछ करे, ऐसे हम अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हमें बुढ़ापे में खोटा ही कोई अनुभव आने वाला होगा तो आएगा ही आएगा, कि उसके कारण से हुआ है ऐसा नहीं, मेरे ही ऐसे परिणाम होने थे हुए, ऐसी बात है। देखो मैं, हम चार भाई हैं, तो बड़े भाई को दो बेटे, दूसरे नंबर के भाई को तीन बेटे, तीसरे नंबर के भाई को एक बेटा दो बेटी, और मेरे को दो बेटियां। तो सब लोग कहते थे अरे ये क्या है, यह अच्छा नहीं है, तुम एकाद बेटा होने दो। हमने कहा नहीं, हम दो और हमारे दो। अभी 20-25 साल हो गए इस बात को, हमारी शादी होके तो 50 साल होने आए अभी। तो फिर बोलते हैं अरे आप ही कितने सुखी हैं, बच्चों को भेज दिया, बेटियों को शादी करा के, और हम तीन तीन बच्चों के उनके बच्चों को संभालते संभालते हैरान हो गए। बेटों की मर्जी संभालना, बहुओं की मर्जी संभालना, बच्चों कपड़ा गंदा करते ये करते फिर भी चुप बैठना, अपना बच्चा करे तो चलता था लेकिन ये बच्चे का बच्चा है ना, तो तुम सुखी हो तुम सुखी हो। मैंने कहा सुख बाहर से आता नहीं है, जो सुख स्वभावी मैं हूं उसमें से सुख आता है। ये वस्तु स्वरूप अगर हमारे ख्याल में आता है, देखो देखो अभी एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं मानना। अभी थोड़े देर पहले ऐसी बात आपने सुनी है इसलिए बताता हूँ। हमारे भाई साहब बोले थे कि इनके जैसा अच्छा स्पीकर कोई नहीं है बाकी है, तो हम तो एकदम खुश हो गए, आह आह आह, अरे मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन मैं तो कहूँगा क्या वो मुझको देख रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। हाँ नहीं, क्यों नहीं, उसको मत पूछो, मुझे पूछो, क्योंकि मैं आरोपी हूं और वो स्वयं भी बोल नहीं रहे हैं। ये बोलने का काम तो भाषा वर्गना का हो रहा है, तो मैं काहे को खुश हो जाऊं और काहे को मैं रोष, यानी खुश या रोष, रोष यानी क्या बोलते हैं, गुस्सा हो, क्योंकि हमने सामने वाले को देखा नहीं है और हम उसकी स्तुति कर रहे हैं या हम उसको गाली दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो बिल्कुल दूसरे की निंदा से या प्रशंसा से अपने को सुखी या दुखी नहीं मानना। तब समझ में आता है कि गुरुदेव श्री बोलते थे कि मैं तुमको सिखा, मैं जहां जहां जाता हूं ना साहेब, लघु सिद्धांत प्रवेश कर लेता हूं, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, ये सिखाने को आया हूं, ऐसा मैं बोलता हूं। तो लोग बोलते हैं यार कहां से किसको पकड़ के आए, देखो अभी हम नागपुर गए थे लास्ट ईयर, तो वहां हस्बैंड वाइफ आते थे, उनके दो बच्चे भी आने लगे, एक मैट्रिक में था एक कॉलेज में था। तो बच्चे बोले कि हमारे पिताजी बोले कि वो ऐसे ऐसे पंडित आए हैं, वो बोलते मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, ऐसा ये बात मैं सिखाने को आया हूँ, तो हम भी आ गए हमको सिखाना। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र है काहे के लिए स्वतंत्र है? दूसरे से मारामारी करने के लिए? अरे नहीं, अपना अपना स्वयं का परिणमन करने में वो स्वतंत्र है। इसलिए देखो क्या लिखा है, देखो छह द्रव्य स्वतंत्र बताए वा हमें आ बीजा श्रुत स्कंदमा नव पदार्थनु भेदती कथन करे छे। कुंद कुंदाचार्य मोक्षना कारणभूत वर्धमान तीर्थंकर भगवान ने मस्तक द्वारा नमस्कार करीने मोक्षना कारण स्वरूप ते छह द्रव्यों ना नव पदार्थ रूप भेद ने कहिश। हुकमचंद जी भारी लेख बहुत बढ़िया बात बताते हैं। तो वो कहीं जाते हैं तो उनकी एक स्टाइल है कि आपने 10 दिन सुना तो आपने क्या खोया और क्या पाया, यानी 10 दिन में आपने 20 घंटे कम से कम सुने, वो तो एक एक दो घंटे बोलते हैं, तो 20 दिन में आपने क्या खोया और क्या पाया। तो फिर कोई उठता है बहुत उत्साही आता है बोलने लगता है, वो सबको बोला रहता है 2 मिनट के ऊपर बोलने का नहीं, लेकिन वो 20 मिनट बोलता है। फिर दूसरा खड़ा होता है, वो 20 मिनट बोला तो मैं जास्ती बोलूँगा। तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो बोलते हैं अरे भाई अभी 11 बजने को आए, अभी बंद करो बंद करो। अरे नहीं 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 बोलने दो बोलने दो, अरे ऐसा बार बार प्रसंग थोड़ी आता है, बोलने दो बोलो तुमको जितना बोलना है। यानी अपनी स्तुति प्रिय है तो कोई भी वक्ता जो होता है बोलता बोलने दो बोलने दो, ऐसा यहाँ मत करना। यानी हमारे भाई साहब बोलते हैं ना ऐसा ऐसा है, बोलो अपन चूबटने का। हमारे मराठी में एक कहावत है हरभरा, समझते हैं हरभरा, चना चना का झाड़, उसके ऊपर चढ़ के क्या होगा, माँ आदमी गिर जाएगा। वैसे हमको चना ना झाड़ ऊपर चढ़ावे है वो अपने सांभवानू, खोटू नहीं मानवानू, साचू ही नहीं मानवानू। ये तो द्रव्य के बारे में एक एक बात निकली ना तो रुका नहीं जाता है।
अब स्कंध का अर्थ समझ में आया?
हाँ बोलो बोलो बोलो।
देखो प्रथम अवधेय हेलो हेलो प्रथम श्रुत स्कंध श्रुत है नहीं, ये जो द्वादशांग श्रुत है उसको श्रुत कह रहे आगम। अभी स्कंध है ना शाखा, श्रुत की एक शाखा है ना, ये दो महाधिकार के ना, वो पहला और ये दूसरा, ये पंचाशिकार ग्रंथ के ही दो अधिकार है, इसलिए वो पहले पुस्तक में पहला श्रुत स्कंद हुआ और ये दूसरा श्रुत स्कंद। वैसे पूरे आगम के लिए भी प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद ऐसा शब्द आता है। प्रथम श्रुत स्कंद में ये सारे षटखंड आगम जो हम सुबह देख रहे ना, जिसके ऊपर की टीका धवला है, मूल षटखंड आगम जो है 6 खंड जो लिखे हुए है उसको प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं। ये सबसे प्रथम वो लिखित रूप से जो जिसको सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। और फिर द्वितीय श्रुत स्कंद ने जो कुंदकुंदाचार्य से जो अध्यात्म के ग्रंथ सारे लिखे, समय सार नियम सार, ये पंचाशिकाय से लेना, पंचाशिकाय है, प्रवचन सार है, समय सार है, नियम सार है, अष्टपाहुड है, अब बाकी भी उन्होंने 84 पाहुड लिखे थे, थोड़े कुछ ही अवेलेबल है उसमें से। हाँ बाद में भी अनेक ग्रंथ रचनाएं हुई, अनेक आचार्यों की हो गई, वो सबको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। मूल जो है षटखंड आगम वो प्रथम श्रुत स्कंद, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ पंचाशिका ग्रंथ के ही दो अधिकार है, उसको पहला श्रुत स्कंद कहा, इसको दूसरा। अभी हमारा द्वितीय श्रुत स्कंद चालू हो जाता है।
हाँ नया पैराग्राफ अभी आई, निमित्त कारण नी व्याख्या करी छे, ભવના અભાવનું કારણ તો પોતાનો સ્વભાવ છે, એવી જેને રુચિ થઈ છે તેને ભગવાન નિમિત્ત છે તેથી તેની સ્તુતિ કરે છે. જેને
એક મિનિટ તો હમારે આપકે લીએ ભગવાન નિમિત્ત કહેલાયંગે કે નહીં કહેલાયંગે? કહેલાયંગે. આપ ક્યા કહેતે હૈ? देखो जिस कार्य होता है तब निमित्त कहने में आता है, कार्य हुआ ही नहीं तो निमित्त काहे का? जिस समय जो एक ही समय में कार्य होता है उसी समय में वहाँ निमित्त भी है. हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भवना अभाव नु कारण तो पोतानो स्वभाव छे एवी जेने रुचि थई छे तेने भगवान निमित्त छे. जैसे वो भगवान आदिनाथ के समोसरण में वो मारीची जो महावीर भगवान का पूर्व का भव यानी वो पूर्व भव का जीव, वही महावीर भगवान का जीव था तो उनके लिए वो निमित्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? उन्होंने कुछ जाना ही नहीं, वो अज्ञान रूप परिणमित हुए, यानी वो भगवान सबके लिए निमित्त नहीं कहे जाते. जो उनका उपदेश ग्रहण करेंगे उनके लिए वो निमित्त कहलाएंगे. ख्याल में आती है ना बात? नहीं समझे? देखो निमित्त किसको कहेंगे? निमित्त कहेंगे किसी, और निमित्त होता किसमें है तो पर्याय में, कार्य में होता है. कार्य ने पर्याय, जब पर्याय क्यों होती है, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है पर्याय रूप से, वहां सामने कोई दूसरा द्रव्य अपनी पर्याय कर रहा है तो हमें लगता है उसके कारण ये कार्य हुआ. होता तो अपने निजी शक्ति से, फिर वो सामने वाली जो अनुकूल चीज हमें भासित होती है उस पर वो निमित्त का आरोप आता है. कब? कार्य हुआ तब. कार्य नहीं हुआ तो निमित्त काहे का? इसलिए ऐसा नहीं कहते वो तो निमित्त रूप से तो वहां हाजिर थे मगर क्या करे हमारा कार्य नहीं. जब कार्य होगा तब उनको निमित्त का आरोप होगा. तो जिन्होंने अपने पहले नहीं कह सकते ना, निमित्त को जुटा सकते हैं ना हटा सकते हैं, क्योंकि कार्य होता है तो वो निमित्त कोई ना कोई, अभी यहाँ कार्य होना है तो सामने निमित्त, तो वो भी जो कोई यथा योग्य निमित्त होगा तो भी वो निमित्त नहीं कार्य में कुछ करता है. क्योंकि महावीर भगवान, अभी जो सिद्ध भगवान को हम ध्यान करते हैं उनका स्मरण करते हैं, तो सिद्ध भगवान सिद्धालय में वो तो किसी का कुछ करते नहीं, ना ही अरहंत भगवान कुछ किसी को करते हैं, फिर भी निमित्त क्यों कहते हैं? हम स्वयं ही अपना जो कार्य करेंगे तो उनका, उनको हम कहेंगे इनका उपदेश हुआ था, हमने सुना, हम हो ऐसा परिणमित हो, ये कहने की बात है. हाँ, वो विनय उपचार सब होता है, यानी ज्ञानी ऐसा जानते ही निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु वो देव का गुरु का शास्त्र का विनय यथायोग्य करेंगे ही करेंगे.
देखो इसको, ये आपको बात क्यों पच नहीं रही है, यानी बैठ क्यों नहीं रही है, क्योंकि निमित्त की परिभाषा जो है वो परिभाषा आपको मालूम नहीं है. मैं अभी बोलूंगा, कल याद करके आना, नहीं तो 10 बार लिख के लाना, दोनों में से एक लिख लो अभी. बाकी लोगों को तो याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो जो स्वयं तो कार्य रूप, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप लिखा, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं. देखो अभी यहाँ कार्य रूप हुआ ही नहीं, कोई मोक्ष गया ही नहीं, आत्मानुभव किया ही नहीं, तो उस भगवान को कैसा आरोप देंगे कि आपके कारण से? टफ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो.
देखो देखो
पढ़ो.
देखो हम आपको हम दृष्टांत पर घटित करते, उदाहरण पर नहीं, वही पढ़ाना चाहती हूँ मैं, वही परिभाषा आपको उदाहरण के द्वारा. अभी घड़ा बना, कार्य क्या हुआ? घड़ा बना, उसका उपादान कारण कौन है? मिट्टी, क्योंकि वो स्वयं उस रूप परिणमित हुए, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है। परंतु आरोप किस पर आ रहा है? कुम्हार पर। तो जो स्वयं तो कार्य रूप न परे, यानी जो कुम्हार स्वयं तो घड़े रूप न परिणमे, है ना, निमित्त की बात हो रही ना, जो इन्हें जो जिसको हम निमित्त कह रहे हैं, वो वस्तु स्वयं तो उस कार्य रूप नहीं परिणमित रही, यानी कुम्हार घड़े रूप तो नहीं परिणमे, परंतु घड़े की उत्पत्ति में, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे। यहाँ घड़ा बनाया किसने, तो हम कुम्हार का नाम ले लेते हैं, उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त किसको कहना, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, एक बात, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर, आरोप वो भी उपचार है कि इसने कार्य किया, ऐसा आरोप उस पर आता है, तो उसको, उस वस्तु को, उसको क्या कहेंगे, निमित्त कहेंगे, बस इतना है। ये रोज एक बार,
रोज नहीं, हाँ, कल 10 बार लिख के लाने का, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, वही तो निमित्त की बात बताए, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, एक बात, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो अभी देखो देखो देखो, जिनेन्द्र भगवान के समोशरण में आप कभी गए हैं क्या? गए हैं, तो आपको समय तो हुआ क्या? तो ऐसे शिक्षक के पास गए इसके लिए नहीं हुआ ना, स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमे, वो तो कार्य रूप नहीं, सम्यक दर्शन रूप कार्य मेरे में होना चाहिए, लेकिन मैंने उत्पन्न नहीं किया सम्यक, तो उनके ऊपर आरोप कैसा आएगा?
देखो स्कूल में टीचर सबको पढ़ाते हैं, फिर भी वो क्लास का कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाता है, तो वो कहेगा, उसको पूछते हैं ना वो टीवी पर, या वो उसके मुलाकात लेते, क्या क्या हुआ, किसने क्या, अरे हमारे टीचर की मेहरबानी, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, मैं पहला है। तो क्या टीचर ने सबको नहीं पढ़ाया था, उसको अकेले को पढ़ाया था क्या? मेरी माँ की मेहरबानी, माँ के कारण है कि उसने मेरी इतनी निगरानी रखी, ये सब तो माँ लिखने गए थे क्या पेपर? ये आरोप उनके करते हैं ना, वो तो बाकी उस विद्यार्थी की अपनी बुद्धि है, उसने वो ग्रास भी किया, उसने वो रिप्रोड्यूस भी किया, लिखा भी, ये उसकी अपनी मेहनत है। पर कहते क्या, आरोप किस पर? अन्य जीव। ये निमित्त कथन हमेशा निमित्त के द्वारा होता है। जैसे अभी हम कहेंगे हम बहुत बीमार थे, अच्छा तो अभी ठीक है, हाँ क्या किया, किसके पास गए, किसने की दवा ली, तो अमुक अमुक डॉक्टर ने अमुक दवा ली, वो दवा खाने से मुझे मेडिसिन से अभी अच्छा आराम है, तो ये ठीक हुआ, तो वो दवा पर आरोप आया कि इसके कारण मैं ठीक हुआ। कभी कभी एलर्जी भी आती है ना, तो ठीक नहीं हुआ तो एलर्जी के लिए उसका आरोप आएगा, इसके कारण एलर्जी आई, ऐसा भी होता है कि नहीं होता? खाली केस नहीं होता, डॉक्टर का खून भी कर देते हैं ठीक नहीं हुआ था। अभी कितने केसेस हो रहे हैं ना, कितने केसेस हो रहे
हैं? हाँ। देखो ये पहली बात तो कल आपको आना है और कल 10 बार लिख के लाना, मैं देखूंगा। हाँ
वो कहते हैं लिखना आसान है याद करने से,
याद तो याद करो,
याद करो।
वो जो कुछ करना है आप एडवाइस देना बाद में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर से ये नया पैराग्राफ फिर से पढ़ता हूँ, हमने अभी डिले कर दिया। आई निमित्त कारण नी व्याख्या करी छे, भवना अभावनु कारण तो पोतानो स्वभाव छे, एवी जेने रुचि थई छे तेने भगवान निमित्त छे, तेथी तेनी स्तुति करे छे। जेने भवनी रुचि छे तेने सर्वज्ञनी रुचि नथी, ने सर्वज्ञनी रुचि छे तेने भवनी रुचि नथी। गम्मे ते भव हो, सर्वार्थ सिद्धि नो भव हो के तीर्थंकर नो भव हो, कोई पन भवनी रुचि धर्मी ने होती नथी। हम आपसे पूछते हैं, अगला भव आपको देवगति का चाहिए या महाविदेह में जाना है? बोलो दक्षा बेन, मनुष्य बोलते हैं। हाँ आप क्या कहते हैं? अभी क्या है आपका? सोचती नहीं है, लेकिन आपको किसी ने बोला कि मैं आपको तुम कहो भाव में भेज देता हूँ, तो किसका चॉइस लेंगे आप? हाँ मनुष्य भाव, यानी अभी हमको भाव की चाह है तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। देखो इधर क्या लिखते हैं, कोई पन भवनी रुचि धर्मी ने होती नथी, जे भाव भावती भाव मळे ते भाव आकुलता छे।
भव जन्म भव क्यों मिलता है? बारंबार नया जन्म नया क्यों धारण करता है? परिणाम के कारण, राग द्वेष के कारण, खाली मिथ्यात्व के कारण है। समय दर्शन होने पर भी कुछ काल तक तो भव धारण करेगा, तो वैसे उसके राग द्वेष के परिणाम भी हो रहे हैं ना वहाँ पर। तो हमें तो भव ही नहीं चाहिए, भव होगे वो बात अलग है, पर चाह है कि उसके अंदर एक भी भव की चाह जहाँ है उसके अभिप्राय में अनंत भवों की चाह पड़ी है। क्योंकि हम भव से अपुनर्भव कहा ना, मोक्ष चाहते का अरे चारों ही गतियों में हो सकता है। हाँ मनुष्य होगे तो ही होगा ऐसा नहीं, क्योंकि अभिप्राय पड़े मुझे एक भाव चाहिए, यानी ये भाव चाहिए, देव का चाहिए, मनुष्य का चाहिए, महाविधे का चाहिए। इच्छा है ना, वो भाव की इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा नहीं है। अभी मैं कैसा हूँ स्वभाव, भव रहित हूँ स्वभाव, उसकी रुचि करे तो वो भव रहित होने का मार्ग भी शुरू हो जाएगा पर्याय में। ख्याल में है ना बात?
हाँ अभी पढ़ लेते हैं, इतना पूरा कर देते हैं। नीचे से थर्ड लाइन, चौथी लाइन, भवजन्य दुख छे तेती आकुलता रहित एकलो ज्ञायक स्वभाव जेने रही गयो छे ने जे पूर्ण दशा पाम्या ने जेना ज्ञान मा त्रण लोक जनाया एवा सर्वज्ञ देव अपुनर्भवनु कारण छे, मोक्षनु कारण तो आत्मा छे, पन भगवान ने तेमा निमित्त कारण कहया छे। इसकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनु सदा देत हो।